अब देखें, जब ये सारी बातें कह दी गई ईजा के साथ, ईजा का कलमा जो है ना वो है फ्यूचर का कलमा। जब ईजा बोला जाता है ना, जब, जिसका तर्जुमा हम कह रहे हैं जब ऐसे होगा, जब ऐसे होगा, जब ऐसे होगा, ये फ्यूचर के लिए होता है। हालांकि हम जब अपनी उर्दू में या इंग्लिश में वैन या जब बोलते हैं तो हम माजी के लिए भी बोलते हैं कि जब मैं आई थी तो तब ऐसा हुआ था, नहीं। लेकिन अरबिक में ईजा जब बोला जाता है तो हमेशा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का कलमा है। लेकिन उसके बाद जो कुवी रहता है, सुई रहता है, उती रहता है, ये सब आप देख रहे हैं ये माजी की है, माजी मजहूल। लपेट दिया जाएगा, बखेर गदला कर दिया जाएगा, चला दिए जाएंगे, तनहा छोड़ दी जाएगी, तो ये सारे कलमात फिर माजी की हैं। माजी किस लिए आता है? इसलिए ताकि इंसान को यकीन हो जाए कि ये बात ऐसे ही यकीनी है जैसे माजी में बात हो चुकी, गुजर चुकी, अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो कहते ना वो, तो हो चुका, अब हो चुका, अब क्या कर सकते, तो क्योंकि माजी की बात को आप चेंज नहीं कर सकते। इतनी सर्टन है ये, इतनी यकीनी है कि जैसे कोई चीज हो चुकी, इस तरह उसको समझो। और इसकी इसको बताने के लिए, इसको रीइन्फोर्स करने के लिए कि ये इतना यकीनी है, ये माजी के सीगे लाए गए हैं, सुइरत, कुशीत, नुशीरत। अब जब कह दिया जाता है जब ऐसा हो, जैसे मैं कहूं कि जब मैं आऊंगी तो के आगे कोई चीज होगी ना, कोई कुछ कुछ कंक्लूजन होगा इसका, कि तो फिर क्या होगा? मतलब अब कान इस चीज के लिए, सुनने के लिए मुंतजर हैं कि जब ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा। देखिए आप, इतनी आयात, यहां तक 13 आयात हमने पढ़ी जिनके अंदर ये हो जाएगा, ठीक है, और 12 में ईजा है। तो ईजा के साथ 12 आयात आ गई कि जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा, तो क्या होगा फिर? उसका जवाब आयत 14 में है, आलिमत नफ्सुम्मा अहदरत। ये एक बात कह के इंसान को झंझोड़ दिया गया, इंसान को तब लग पता जाएगा कि वो क्या लेकर आया, उसने क्या हाजिर किया, क्या लाए हो, क्या साथ है, क्या प्रेजेंट करना है, क्या पेश करने के लिए उसके पास है। इंसान को अच्छी तरह पता चल जाएगा, इंसान अच्छी तरह जान जान लेगा उस दिन। आज भी जानता है लेकिन उस दिन कैसे अच्छी तरह पता चल जाएगा, उसको तो अपना हिसाब खुद ही पता है ना, उसको तो पता है कि वो क्या करता रहा है। और जो चीजें नहीं पता थी वो भी उस दिन पता चल जाएंगी। किस तरह से? कि बाज दफा इंसान कोई काम कर रहा होता है, वो अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है, कहता है, मैं तो बस अल्लाह की खातिर कर रहा हूं, अल्लाह की खातिर कर रहा हूं, हालांकि वो अल्लाह की खातिर नहीं कर रहा होता, उसके अंदर उसकी कोई और गर्ज शामिल होती है जो उसने अपने आप को भी डिक्लेयर नहीं की होती। इंसान को अच्छी तरह पता चल जाएगा उस दिन उसके बारे में। अब देखिए हम सारे बैठे पढ़ रहे हैं, सबकी क्या एक ही नियत है? नहीं, कोई किसी नियत से पढ़ रहा है, कोई किसी नियत से पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है कि अच्छा मैं अपनी जिंदगी संवार लूं, कोई इसलिए पढ़ रहा है कि कोई मुझे सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा, कल कोई कोई जॉब भी कर लूंगी, कोई इसलिए पढ़ रहा होगा कि लोगों के साथ मुकाबले करूं, अब मुझे भी कुछ आना चाहिए, मुझे भी कुछ पता चलना चाहिए, क्योंकि हर वक्त दूसरे लोगों को पता होता है, मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। अब मेरे बच्चे सवाल करते हैं, अब मेरी दोस्तें सवाल करती हैं, या कहीं जाऊंगी तो जरा मैं बात जरा कर सकूं, या लोग मेरी भी वाह वाह करें कि इसको तो बड़ा आता है, तो मुझे भी इसकी खातिर कुछ सीख लेना चाहिए। कोई किसी नियत से पढ़ रहा होगा, कोई किसी नियत से पढ़ रहा होगा। अब उस दिन सब की नियतें सामने आ जाएंगी, सबका पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा था, और हर एक को पता होगा, हर एक को पता होगा, नफ सुन है, नकेरा है, अमूम है, उसमें हर शख्स को पता चल जाएगा। يوم تجد كل نفس بما عملت من خير محترم وما عملت من سوء تود لو أن بينها بينه أمدا بعيدا. उस दिन देख लेगा हर नफ्स जो उसने खैर में से किया होगा वो भी देख लेगा, उसको अपने सामने हाजिर पाएगा, और जो शर में से किया होगा सू होगा बुराई होगी तो चाहेगा कि उसके और उसके दरमियान इतनी दूरी हो जाए, बहुत ज्यादा दूरी। वो चाहेगा कि ये बुराई तो मुझे कभी नजर भी ना आए। तो उस दिन अपने आमाल की असल हकीकत का भी पता चल जाएगा। एक तो ना हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आज है, चाहे हम अपने आप को कितना भी एक्सक्यूजेस देते रहें, लेकिन हर एक को जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वलहु अल्का माजीरा, चाहे इंसान कितनी माजरतें करे कितने एक्सक्यूजेस दे, लेकिन हर एक इंसान जानता तो है अच्छी तरह कि वो क्या कर रहा है। लेकिन उसके अलावा ये जो चीज है ना, असल हकीकत का पता चल जाना अपने अमाल की, ये भी बहुत अहम चीज है। क्योंकि बहुत दफा हम अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। वाकई जो हमारी इंटेंशन है वो नहीं होती जो हम बता रहे होते हैं, जाहिर कर रहे होते हैं। और बहुत दफा जैसे हदीस में है कि इंसान कोई कलिमा अपने मुंह से निकालता है जिसको वो बहुत मामूली समझता है, कोई बड़ी बात नहीं समझता, मगर वो अल्लाह ताला को इतना नापसंद आता है कि वो उसकी वजह से 70 साल के डिस्टेंस तक जहन्नुम में अपना ठिकाना बना लेता है। और कोई कलमा इंसान अपने मुंह से एक निकालता है, एक कलमा जो वो खुद बहुत बड़ा चीज नहीं समझता उसको, मगर अल्लाह ताला को इतना पसंद आता है कि वो अपने लिए जन्नत में 70 साल की मुसाफत तक अपना ठिकाना बना लेता है। तो उस दिन हर नफ्स को पता चल जाएगा, इंसान आज रात में सोता है उसको नहीं पता कि मैं अल्लाह ताला को नाराज करके सो रहा हूं या राजी करके सो रहा हूं। और सूरह कहफ में है ना, कुल हल उनब्बिकुम बिल अख्सरीना आमाला, कि मैं तुम्हें बताऊं ना कि आमाल के लिहाज से सबसे ज्यादा घाटे में कौन है, वो जिसकी सारी मेहनतें इसी दुनिया के लिए लग गई और वो क्या समझता रहा कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये दुनिया में बड़ा अच्छा समझते रहे हम, तो बहुत अच्छी बड़ी नेकियां कर रहे हैं हम तो, लेकिन उनमें जिस जैसे आप कहेंगे कि वायरस उनको लग गया, कोई बीमारी लग गई, या वो जो टर्माइट होता है, जो ये दीमक होता है, दीमक ने चाट लिया था उनको, वो तो अंदर से खोखली थी, तुम्हें नहीं पता था, तुम्हारी नीयतें, तुम्हारे तकब्बुर, तुम्हारी रियाकारी, तुम्हारी शो ऑफ, तुम्हारा लोगों के लिए करना, उनके दिखावे, ये सारी चीजों ने उनको खोखला कर दिया था, यहां सुन्नत के मुताबिक ही नहीं थी वो। तो आलिमत नफ्सुम अहतरत, उस दिन इंसान को अच्छी तरह पता चल जाएगा कि वो क्या प्रेजेंट करने के लिए लाया है। वो जान जाएगा, हर नफ्स को पता चल जाएगा। तो इससे उस दिन की इंटेंसिटी का हमें अंदाजा होता है। अब हर आयत को इसके साथ रखें, इज़ शम्सु कुविरत आलिमत नफ्सु मा अदरत, व इज़ नुजूम उनकदरत आलिमत नफ्सु मा अदरत, व इज़ जिबालु सुयिरत आलिमत नफ्सु मा अदरत। हर एक के साथ रख के देखें, हर एक आयत का यही है। जब सूरज लपेट दिया जाएगा इंसान को, तब पता चल जाएगा कि वो क्या लेकर आए। जब सितारे गदले हो जाएंगे, तब इंसान को अच्छी तरह पता चल जाएगा वो क्या लेके, सारी गलत फहमियां दूर हो जानी। आज अपने आमाल नामे में से जो जानते हैं ना हम, उससे भी नजर चुराते हैं, हमें पता है लेकिन उससे भी नजर चुराते हैं, उसको भी मानना नहीं चाहते, उसके ऊपर भी पर्दे डालते हैं। और अब क्या, अब जब सहीफे नशर किए जाएंगे पता चल जाएगा, क्योंकि भले इंसानों वाला नफसी ही बसीरा, इंसान बड़ी अच्छी तरह जानता है अपने आप को, और अब तो आमाल नामा भी हाथ में आ गया, तब तो सब कुछ ही कच्चा छट्टा सामने आ गया। तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा अमल पहुंचा और कौन सा दुनिया में ही रह गया। कौन कौन से अमल में क्या खराबियां थी, क्योंकि यहां पे तो हम भूल जाते ना, बहुत ही जल्दी भूल जाते, गुनाह करके भी भूले बैठे हैं कि क्या क्या गुनाह किए याद ही नहीं है, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं सबको ये अच्छी तरह पता है, फिर भी उसको गफलत इतनी छाई हुई है, फिर भी उसको बस इग्नोर ही किए जाते हैं। इस एक साइड पर किया हुआ, सबको पता है मैं किस तरफ मेरी दौड़े लग रही हैं, मेरा अमल क्या है, फिर भी इग्नोर इग्नोर, यानी उस दिन किधर भागेंगे, उस दिन तो देखना ही पड़ेगा मैं क्या करती रही। तो अकलमंद कौन है फिर जो इस दिन के लिए तैयारी कर ले, क्योंकि इस दिन फिर इमेजिन करें कि मेरे हाथ में मेरा अमालनामा आ गया है। सबसे पहली चीज सोचे, अगर आप अपनी आंखें बंद करके ना अपने आप को जरा वहां ले जाके खड़ा करें कि मेरे हाथ में मेरा अमालनामा है और मैं इसको खोल के देख रही हूं, उसमें क्या लिखा है, और फिर सोचें कि क्या ख्याल सबसे पहले आएगा, क्या ये नहीं आएगा हाय कुछ और ज्यादा कर लेती, ये तो बहुत मुश्किल दिन है, मैं कैसे बचूंगी यहां पे, इसीलिए तो सूरह फजर में ना या लैतनी कद्दम तुली हयाती, उस दिन इंसान कहेगा काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता, इस जिंदगी के लिए कुछ, जिंदगी अब उसको कौन सी लग रही, ये नहीं कहेगा या लैतनी कद्दम तू फी हयाती, अपनी जिंदगी में कुछ किया होता, कुछ आगे भेजा था, तब तो होता कि दुनिया की जिंदगी में कुछ भेजा होता, वो तो उसको जिंदगी लगेगी ही नहीं, ली हयाती, अब उसको पता है जिंदगी के लिए, इसका मतलब अब उसको समझ आई कि जिंदगी असल तो ये है, वो थोड़ी जिंदगी थी, अल्लाह हू अकबर, वो तो एक ख्वाब था, वो तो दिन का एक हिस्सा था, तो क्या हसरत नहीं होगी, आए वो लम्हे क्यों बेकार बर्बाद कर दिए, ऐसे ही घूमती फिर रही थी बेकार चीजों में, अपना वक्त जाया कर रही थी, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, कोई ऐसे काम जब काम कर रहे हो तो सोचा करें मैं कितना अपनी आखरत के लिए इस वक्त में काम कर सकती, और मैं कितने फजूल चीजों में काम करूं बस इसलिए कि दिल को अच्छा लग रहा है, बस इसलिए कि इसमें मजा आ रहा है, बस इसलिए दिल की खुशी के लिए मैं तो अपनी कर रही हूं, कितने ही काम दिल की खुशी के लिए ऐसे बेकार कर रहे हैं जिनका आखरत में कोई मसरफ नहीं, बल्कि इस दुनिया में भी शायद वो 1-2 घंटे की खुशी हो और उसके बाद कुछ भी नहीं उसका हासिल, लेकिन हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कितना खपते हैं उसके पीछे, कितने अपने घंटे लगाते हैं, तो उन घंटों में अगर कुछ हम आखरत के लिए काम कर लें कितना अजर समेट सकते, लेकिन हम कुरान पढ़ते हुए भी हमारे दिन देखें, हमारी रातें देखें, हमारा पिछला पूरा साल देखें और जिंदगी देखें, कितने कितने आवर्स, कितने कितने दिन हम बेकार चीजों में गुजार रहे हैं, और कितना छोटा सा दिन का हिस्सा है जो हमारा अल्लाह की याद में गुजरता है, कभी जो हमें हमारे अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजरता है, जिसमें हम कोई वाकई ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं जो आखरत के लिए है, वो कितना छोटा हिस्सा होता है, और बाकी सारा फजूल इधर चले गए उधर कर लिया, इधर बैठ गए उधर बातें कर ली, इधर कुछ ऐसे कामों में लगे होते हैं जिनका आखरत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका कोई हासिल नहीं। खुद सोचें कि क्या मैं उस दिन खुश हो जाऊंगी कि ओहो मैंने तो सारी जिंदगी बड़ी अकलमंदी के साथ गुजारी, देखो मैं बड़ी फ्यूचरिस्टिक थी, मैंने अपने सारे दिन को इस तरह से रखा होता था कि मैंने आखरत के लिए क्या करना है, ये मेरा काम आखरत के लिए, ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, मैं समेटती रही नेकियां समेटती रही नेकियां, क्यों, इसलिए इन्नी तरह तू अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होना है ना, तो मैंने उस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी थी, ये कहूंगी या कहूंगी हाय 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 ये ना ही मिलता, हाय अल्लाह इसमें ये क्या है, हाय मैंने क्यों ये लम्हे गुजार दिए, मैं क्यों फलां के साथ मैं दोस्ती कर बैठी थी उसने मुझे गलत रास्ते पे लगा दिया, हाय मैं क्यों लोगों की बातों में आ गई, मैं क्यों लोगों को खुश करने के लिए कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ, आधी मेरी जिंदगी तो इसी में गुजर गई, लोग खुश हो जाएंगे लोग देखेंगे लोगों को मजा आ जाएगा, और कभी मैं अपने आप को खुश करने के लिए, मेरी खुशी इसमें मेरी खुशी उसमें, उसके लिए मैंने कितने ही दिन गुजार दिए जिसमें मेरी नमाजें निगलेक्ट हो रही थी या मेरी नमाजें बेकार हो रही थी, अच्छा ये मेरी नमाजें ये क्यों खराब है? इसलिए कि फलां दिनों में मैं तो ये कर रही थी, मैं वेकेशन पे थी, मैं शादी की तैयारी में मशगूल थी, मैं कहीं सैरो तफरी के लिए जा रही थी, मेरे घर मेहमान आए हुए थे, बस मेरी सारी ये बड़ी खराब हो गई, सारी नमाजें। मेरे पास कितने ही दिन थे, सेहत भी थी, छोटे छोटे दिन भी होते थे, मैंने इनमें भी रोजा नहीं रखा। पार्टी टाइम बहुत होता था, कभी सोचा ही नहीं था। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इकतरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और इनकी हालत देखो जरा, गफलत में पड़े में, ऐसी गफलत छाई हुई है, सुन सुन के भी कोई असर ही नहीं होता, कोई तैयारी की फिक्र नहीं, कोई अपने मशाकिल को चेंज करने का नहीं सोच आती नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं कि उस दिन मैं खड़ी होंगी तो क्या होगा, उस दिन की मैं कोई प्लानिंग करूं। हु फेल्स टू प्लान प्लान्स टू फेल है ना, ये कहा जाता है ना कि जो प्लानिंग नहीं करता वो फेलियर के लिए अपनी प्लानिंग कर रहा है, वो तो उसका फेलियर ही है, लेकिन तो उसकी कोई प्लानिंग नहीं। आप देखें यहाँ पे कुछ छोटा सा इवेंट भी होता है, हमारी कितनी प्लानिंग होती है, जितनी जिस चीज को हम अहमियत देते हैं उतनी ज्यादा बड़ी प्लानिंग करते हैं ना, उतने ही दिन पहले से है प्लानिंग करते। मिसाल के तौर पे एक शादी है तो उसकी प्लानिंग साल से शुरू हो जाती है, साल से पहले से बुकिंग्स हो रही हैं, यहाँ पे ये वहां पे वो, कितनी प्लानिंग होती, क्योंकि हमारे लिए वो अहम है। लेकिन ये दिन हमारे लिए कोई ऐसी अहमियत नहीं रखता, इसका कोई प्लानिंग भी नहीं। जिंदगियां गुजर गई, 40 50 60 साल के हो गए, तब भी कोई प्लानिंग नहीं है, तब भी जिंदगी वैसे ही गुजर रही है जैसे 20 साल की उम्र में गुजरती थी, तब भी मशगले ऐसे ही हैं, शौक वो ही है और टाइम वेस्टिंग वो ही है, जबकि हम हर दिन अपनी आखरत के करीब जा रहे हैं, अल्लाह ताला से मुलाकात के करीब जा रहे हैं, इस दिन को देखने वाले हैं जिस दिन हमने अपना आमालनामा अपने हाथ में पकड़ा होगा और हमें नजर आ रहा होगा ये क्या कर दिया मैंने, मैंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया, ये मैं क्या कर बैठी, कितना रोना होगा उस दिन। आज एक इन्वेस्टमेंट आप गलत कर बैठे ना तो इतना रोना मच जाता है, हाय ये क्या कर दिया, हाय गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, वो तो पैसा ही है ना, कभी दोबारा भी आ सकता है, इस वक्त को कैसे लाओगे, इस जिंदगी को कैसे लाओगे, इन दिनों को कैसे लाओगे वापस, लेकिन कोई असर नहीं है। इन आयात को तो हमें झंझोड़ देना चाहिए, मगर ये दिल कैसे पत्थर हो गए ना, यहाँ याद सुनते भी हैं फिर भी अपनी रविश नहीं बदलते, फिर भी हमारे वही शौक है, फिर भी हमारी वही मसरूफियात है, तो कब समझेंगे, जब इज़्ज़त सुहू नुशीरत हो जाएगा, जब इज़्ज़त समाओ कुशीतत हो जाएगा, भाई जब जहीम सायरत हो जाएगा तब समझेंगे, तब तो समझ आ ही जाएगी, सबको समझ आ जाएगी, तब समझने का क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत, फिर रोएंगे तो रोने का फायदा नहीं, फिर हसरतें करेंगे तो हसरों तो का फायदा नहीं, फिर गमजदा होंगे तो गम कर का फायदा नहीं, आज समझे बैठे बहुत कर लिया जी, बहुत कर लिया, एक कुरान का कोर्स ले लिया बहुत हो गया, नमाजें मैं पढ़ लेती हूँ बहुत हो गया, तहज्जुद में मैं उठ जाती हूँ बहुत हो गया, ये तो बहुत ही हो गया जी, और मैं हिजाब भी ले लेती हूँ, चलो जी 4 5 जीदा जीदा काम मैंने रख लिए, सदका भी कर देती हूँ, और क्या करूं, कभी अपने उन अमाल को भी देखा जो साथ साथ इनको कैंसिल कर रहे, जो गुनाह कर रहे हैं हम, जो नाफरमानियां कर रहे हैं हम, उस दिन कोई अंबिया जितना भी अमल लेकर आएगा तब भी उसको फिक्र होगी और कहेगा हाय काश कुछ और कर लेता, इतना अमल भी लेकर आएगा तो अंबिया भी उस दिन नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, वो ये नहीं कहेंगे हमने तो काफी कर लिया था, हमें क्या जरूरत है परेशान होने की, हर एक पुकार रहा होगा, तब जहन्नुम को भड़काया जाएगा, जब जहन्नुम लाई जाएगी, जब जहन्नुम का शोर सुनेंगे हर एक घुटनों के बल चला जाएगा। इस आमालनामे को अभी लेके, अभी तो बुक्स मिली हैं, अभी तो खुद पता चला, अभी तो इसको लेके पेश होना है, अभी तो पुकारा जाएगा, फलां बिन फलां, आ जाओ अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो जाओ। जब तकसीम हो जाएंगे ना, तो उसके बाद सवाल किया जाएगा, सवाल के लिए एक एक को फर्दन फर्दन पुकारा जाएगा। किसी का हाथ पकड़ के नहीं जा सकते, मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, मुझे तो व्हील चेयर पे बिठाओ, मैं तो नहीं खड़े हो सकता। यहाँ पे तो बेहोश हो जाते हैं, यहाँ पे तो कोई परेशानी हो तो फिर इंसान का वैसे ही हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को नहीं होगा। और अल्लाह ताला पूछेगा उस दिन, तुम क्या हाजिर कर रहे हो, तुम क्या लेकर आए हो, उस दिन ये सवाल होगा। अल्लाह ताला सवाल करेगा एक इंसान से कि अब तो तुम आगे क्या पेश करने वाले हो। वो सोचे अहदरत होती टेंजिबल चीज को हाजिर करना, कोई चीज जो के मतलब टेंजिबल है, तो या तो किताब होगी या आमाल होंगे जिनकी शक्लें होंगी, वो अपनी शक्लों में आएंगे, और इंसान जो है इनको लेके हाजिर होगा, फिजिकल फॉर्म में आएंगे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला सवाल करेगा, तुम क्या हाजिर कर रहे हो, तुम क्या लेकर आए हो। अब ये कितना मुश्किल मरहला होगा। और अल्लाह ताला बगैर किसी तर्जुमान के बराहे रास डायरेक्ट सवाल करेगा, कोई वकील नहीं होगा वहां पे, खुद ही अपनी सफाइयां पेश करनी होंगी। और इंसान कुछ छुपा तो ना सकेगा कि जैसे दुनिया में छुपा के लोगों के सामने एक फेस रखा होता है, और एक और फेस है जो हमारा अपना है, जिसमें हमें खुद पता है कि क्या है हम। गालिबन नफ्सुम्मा अहदरत, इस एक आयत को ही पढ़ ले और इंसान इस पे ही गौर कर ले, तो उसकी जिंदगी कितनी सीधी हो जाए, निकाल दे अपनी जिंदगी से वो सब काम जिनको लेके हाजिर नहीं हो सकते, जिनको लेके वहां पे खड़े होना मुश्किल हो जाएगा, जिनके लिए हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। इंसान हसरत करेगा उन सारे लम्हों पे और उन दिनों पे और उन बातों पे और उन मजलिसों पे और उन दोस्तों पे और उन तरीकों पे जो उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी में काटे, या जो उसने जाया कर दिए लम्हा। तो लम्हे तो छोड़े, हमारे तो दिन और साल और महीने सब जाया हो रहे हैं, लेकिन हमें होश नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बी का कद हनफा मुलाकी, तू कशा कशा चला हुआ अपने रब की तरफ, उससे मुलाकात करने वाला, यानी हर दिन हमें अल्लाह ताला की मुलाकात के कर रहा है। तो कोई होश है, जवान है या बूढ़ा, सभी मदहोश है आज, सभी गफलतों में आज। एक उम्र को भी पहुंच जाते हैं तब भी कोई होश नहीं आता। 60 साल का जो हो गया उसके तो सब एक्सक्यूजेस खत्म हो गए, उसके पास उस दिन कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। लेकिन आज उससे पहले ही लोग दुनिया से रुख्सत हो रहे हैं, क्या एक्सक्यूज देंगे। कल का दिन जमीन के ऊपर होता है या जमीन के नीचे कोई पता नहीं है, तो क्या इसके बारे में कहेंगे जो जिंदगी गुजार दी। फला उकसिमु बिल खुन्नस। अब आगे यहां से एक मजमून मुकम्मल हो गया, ऐसा लगता है बिल्कुल डिफरेंट मजमून शुरू हो गया, हालांकि डिफरेंट नहीं है। इंसान अगर चाहता है कि वो अपने आमालनामे में वो चीज देखे जो उस दिन उसको खुश कर दे, तो ये तभी हो सकता है जब वो वही से अपनी जिंदगी का चार्टर ले, अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका ले, वही को अपना रहनुमा बनाए, वही की हिदायत पे चले, तब वो उस दिन खुश होगा, तब वो उस दिन देख के इसकी प्रेजेंटेबल होगी बुक। लेकिन वही के लिए भी सबसे पहले ये जरूरी है कि उसके ऊपर यकीन किया जाए कि ये अल्लाह की तरफ से है। यही यकीन इंसान को इसके ऊपर अमल करने पे उभारता है। जब ये यकीन नहीं होता, ठीक है, वही कि वही अल्लाह ताला की तरफ से आई। अब देखिए ये कई लोगों को अल्लाह ताला को भी मान लेते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में क्या होता है? शरीयत को नहीं मानना, जो अहकामात हैं शरीयत के, जो कुरान में है, जो हदीस में है अहकामात, उनको नहीं हम मान सकते। अब वो किस लिए? क्योंकि जब ये यकीन नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से है, तो फिर मानना भी मुश्किल है। जिस दिन ये यकीन आ जाए ये अल्लाह ही की तरफ से है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, तब उसको मानना आसान होगा। तो अब देखें यहां पे, फला उकसिमु बिल खुन्नस, इसके लिए कसम खाइए, बस नहीं मैं कसम खाता हूं पीछे हटने वाले की। ला के साथ क्यों शुरू की गई बात? कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो ला के साथ बात शुरू की, ये पिछली बात की नगेशन है, नगेट किया गया कि जो तुम समझते हो ऐसा नहीं है। तुम समझते हो कि ये किसी काहिन का कॉल है, या कि इनको कोई सिखा जाता है, या ये अपनी तरफ से इन्होंने खुद बना लिया है, तो नहीं, मैं कसम खाता हूं पीछे हटने वाले की। और इससे मुराद है सितारा, वो जो आता है और पीछे हट जाता है, चल रहा होता है एक रास्ते, फिर उसके बाद पीछे हट जाता है। इनका चलना, बात सितारे, उनका चलना दो समतों में होता है। अल जवार, सीधे चलने वाले, जारिया से। अल कुन्नस, किनास जो होता है वो हिरन की जो पनाहगाह होती है उसको कहते हैं, जहां पे वो छुप जाता है जाके। तो छुप जाने वाले सितारों की, ऐसे सितारे जो पीछे हटने वाले, फिर सीधे चलने वाले, फिर छुप जाते हैं। वो चलते चलते पीछे हो जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर छुप जाते हैं। दिन के वक्त वो नजर नहीं आते, अपनी चाल भी बदल लेते हैं। उनकी कसम, वल्लैली इज़ा असअस, और रात की जब अस 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 के दोनों माने, अरबिक के अंदर बाज अल्फाज ऐसे हैं जिनके ऑपोजिट माने भी होते, आना भी और जाना भी। वो जब आ रही है या जब जा रही है, तो ज्यादा माना कि जब जा रही है, क्योंकि आगे है वह सुबह, और सुबह इजा तनफ्फस, जब वो सांस लेती है। रात चली गई, दिन आ गया, और ये तब्दीलियां जो इतनी बड़ी हो रही हैं, ये उस मालिक के करने से हैं जो हर चीज पर कादिर है, सितारों की गर्दिश पे और दिन और रात के लाने पे। रात चली गई और दिन आ गया, इतनी बड़ी तब्दीली है सितारों का, ये सफर करना, उनको चलना और छुप जाना, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और बाज ने इसे ये लिया है कि देखिए ईसा अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो जो जमाना था जिसमें कोई पैगंबर नहीं आया, वो ऐसे ही है जैसे सितारों का। उससे यानी सितारों से इंसान रास्ता, उस तरह से इतनी रोशनी नहीं होती कि हर चीज नजर आ जाए, बस टिमटिमाते सितारे थे, कोई कोई था जो सही उसके ऊपर था। रात थी और उसके बाद फिर सुबह का उजाला हो गया, और सुबह सांस लेती है, यानी सुबह का वक्त भी आप देखें ऐसा होता है, इतना ज्यादा फ्रेश टाइम होता है, ऐसे लगता है हर चीज जाग गई, चहल पहल शुरू हो जाती है। तो इतनी खूबसूरत एनालॉजी है ये, कि जब सुबह ने सांस लिया, ये कसमें खा के फरमाए, इन्नहू लकौलु रसूलिन करीम। ये कौल, इन्नहू की जमीर किस तरफ है? पीछे तो किसी चीज की बात नहीं आ रही। यूजुअली जमीर जब आती है तो पीछे कोई चीज मेंशन्ड होती है, उसकी बात होती है, फिर उसके बाद फिर जमीर लाई जाती है। जैसे हम कहें हामिद आया और उसने खाना खाया, तो अब पता चला कि उसने किस तरफ है, हामिद की तरफ है। तो यहां पे तो कोई भी चीज नहीं है, तो फिर किसकी तरफ है बात? तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि उस जमाने में ऐसे था कि जो कुराने करीम के बारे में लोग इतने ज्यादा डिस्कशन कर रहे थे, कि कुरान के ऊपर बातें, कि ये किसका कॉल है, ये शायर है, ये शायरी है, या ये कहानत है, या ये जादू है, या ये है, इतना ज्यादा इसके ऊपर बातचीत चल रही थी, हॉट टॉपिक था, कि उसके ऊपर यहां पे ये भी नहीं लाया गया कि यह कुरान की बात है, बल्कि कह दिया गया इन्नहू, बेशक ये जो यानी कुरान है, ला कौलु रसूलिन करीम, ये अलबत्ता कौल है एक मुअज्जज का, एक करीम का, करीम मतलब ऑनरेबल मुअज्जज। और इसके अंदर आप देखें ये इशारा जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ है, यहां पर उनको बता के इस वही की हक्कानियत को बयान किया गया कि यह वही सच है, इसलिए क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है और कोई इंसान क्वेश्चन कर सकता है इस बात की, जी क्या दलील है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है। तो इसकी दलील यहां पे बताई गई, क्योंकि जैसे हम हदीस जब पढ़ते हैं तो हदीस में एक चेन होती है नरेशंस की, इस फलाने फलां से सुना, उसने उससे मुलाकात की, उससे बराहे रात सुना, फिर उसने उससे मुलाकात की, उससे सुना, उसने उस सहाबी से मुलाकात की, और उस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और आपसे ये सुना। तो इस तरह से चेन चलती है। तो कुरान करीम की चेन क्या है? कुरान करीम को लाने वाला कौन है? अल्लाह ताला की तरफ से। और ये बात बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि बाज लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर, जैसे परवेजी फिरके में ये समझा जाता है, या और कई लोगों के अकायद ऐसे हैं कि वो जो चीज अकल के ऊपर पूरी उतरती हो और अकल में आ सकती हो वो सिर्फ उसको मानते हैं, जो चीज अकल से बियॉन्ड हो उसका वो इनकार कर देते हैं। और उन्हीं में एक चीज फरिश्ते भी हैं, जिनको लोगों ने कहा, ऐसे लोगों ने जो कि अकल पे हर चीज को परखते थे कि नहीं फरिश्ते कोई चीज नहीं होती, ये तो बस फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, ये तो फरिश्ते कुछ कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई मखलूक नहीं है। तो अब वो क्या कहें इस बारे में कि फिर वही कौन लेकर आया, वही लाने वाला कौन था? तो वो कहते नहीं वही भी कोई फरिश्ता नहीं लेकर आया है, वही वही भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता था, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन हो जाता था, और फिर उनके ऊपर ऐसे वो उनके दिल में से ही निकलते थे ये अल्फाज, और इस तरह से ये कुरान है। तो ये यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इंसान समझे इस लिंक को, जो जिब्राइल अमीन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, उसको यहाँ पे बयान किया गया कि ये लाने वाला फरिश्ता रसूल जो मैसेंजर था वो मुअज्जज है, और जो मुअज्जज होता है, जो ऑनरेबल होता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, इज्जतदार इंसान झूठ से परहेज करता है। ये है कॉल, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कॉल है। कलाम में और कॉल में फर्क है, कलाम वो होता है जो डायरेक्ट किसी का होता है, जैसे आप कहेंगे ये फलां का कलाम है, और एक कहते हैं कॉल के उसने उसकी बात को आगे पहुंचाया, उसका कॉल है ये। रसूल का मतलब ही क्या है? मैसेंजर। तो मैसेंजर मैसेज किसी का लेकर आता है, उसका अपना नहीं होता, पैगाम बर पैगाम लेकर आता है दूसरे का। तो वो पैगाम लाने वाले थे, वो मैसेज कन्वे करने वाले थे, खुद से मैसेज बनाने वाले नहीं थे। एक तो ये बात समझ में आ गई, इन कसमों के बाद ये बताया गया और इस चीज को साबित किया गया कि ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राइल अमीन को दिया गया, और वो कैसा फरिश्ता है? जी कुव्वतिन, बहुत कुव्वत वाला है वो फरिश्ता, कुव्वत वाला है, ये बताने की क्या जरूरत है? इसलिए कि कोई ये ना समझे कि ये फरिश्ते से किसी ने, हो सकता है कि वही को चुरा लिया हो और खुद से इसके अंदर ऐड करके और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया हो, नहीं, वो बड़ी कुव्वत वाला है, किसी शैतान की हिम्मत नहीं कि उनके करीब भी फटके। और वो इतनी ज्यादा कुव्वत वाले हैं कि आप देखें एक पर के ऊपर उठा के सारी बस्ती को गिरा दिया था, लूत अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती को एक पर पे उठाया था और उल्टा कर दिया था। आइंदा दिल अर्शी मकीन, अर्श वाले के नजदीक मकीन है, मकीन वैसे भी यानी कि उसके करीब है, और वकीन का मतलब बुलंद मर्तबा भी है, बहुत बड़े स्टेटस वाले हैं, मकाम वाले हैं, ये भी मतलब है। अब देखें कितनी ये बड़ी एक बात है इसको सोचने की कि जिब्राइल अमीन सब फरिश्तों के सरदार हैं, सब ज्यादा कुव्वत वाले फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के। हाँ, इनका बहुत बड़ा मकाम है, यहां से पता चला ना। और क्या खसूसियत इनकी बताई गई, यानी ये सारी के मुअज्जज़ भी हैं, नंबर टू कुव्वत वाले भी हैं, अल्लाह ताला के हम बुलंद मर्तबे वाले भी हैं, और मुतायन इनका कहना माना जाता है, ये चौथी क्वालिटी इनकी बताई गई। और सम्मा अमीन देयर एंड देन, सम्मा का मतलब उस जगह पे अमानतदार भी हैं, पांच क्वालिटीज जिब्राइल अलैह सलाम की बताई गई। मुता कैसे हैं, यानी इनका हुक्म चलता है सारे फरिश्तों पर, हर फरिश्ता इनकी बात को मानता है जो ये हुक्म देते हैं। तो इसका मतलब है इनकी कमांड है, इन ये सरदार हैं सारे फरिश्तों के, उनके टॉप पे हैं। और ये भी कि अमानतदार है, अमानतदार एक तो इनकी कहना भी सुना जाता है और अमीन भी है, यानी कोई ये ना समझे कि हो सकता है इनके पास तो कोई नहीं आ सकता था और कोई भी इनकी बात के आगे कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन हो सकता है खुद ही ना उन्होंने कुछ आगे पीछे हेर फेर कर दिया हो, कोई खुद ही पैगाम में से कुछ करप्ट कर दिया हो, नहीं वो भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत अमानतदार हैं। अल्लाह अकबर। और इससे आपको इस पैगाम की कदर पता चलती है, क्योंकि अल्लाह ताला के हाँ जाहिर है कुरान करीम का मर्तबा आप इमेजिन करें कितना होगा कि अल्लाह ताला ने सबसे बड़े फरिश्ते कुव्वत वाले, यानी बड़े तो हो सकता है साइज में उनसे बड़े कोई और हो, लेकिन इतने बड़े फरिश्ते को जिसका मकाम इतना बुलंद है अल्लाह ताला के पास कि अर्श के करीब वो रहते हैं, उनका मकान वहां है, और दूसरा उनका मर्तबा बहुत बुलंद है, और जिनकी बात सुनी जाती है सब फरिश्तों में, और जो बहुत अमानतदार हैं और बहुत मुआज्जज हैं, उनको अपना मैसेंजर बना के भेजा। और किसके पास भेजा, जो इंसानों में बेस्ट है, और जो फरिश्तों में बेस्ट है उनको भेजा पैगाम दे के, और जो इंसानों में बेस्ट है उनको बनाया पैगाम लेने वाला। तो इस कुरान की अहमियत को आप समझ लें, क्योंकि जाहिर है जब किसी बादशाह ने भी अपना खास पैगाम किसी को भेजना हो तो किसको चूज करता है, जो ट्रस्ट वर्दी हो, जिसका उसको पता हो कि ये मेरा खास बंदा है, ये मेरा काम पूरा करेगा और जिम्मेदारी से पूरा करेगा, और ये कि ये उसके बादशाह के हाँ बड़ा मकाम रखता हो उसको भेजेगा। तो अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को चूज किया। तो फरिश्ते बहुत और तरह के भी फरिश्ते हैं, जैसे अर्श उठाने वाले भी फरिश्ते हैं, और करामन कातिबीन भी हैं, और मुनकर नकीर भी हैं, और भी बहुत सारे मलकुल मौत भी हैं, लेकिन जो मकाम जिब्राइल अलैह सलाम का है वो और किसी फरिश्ते का नहीं है। तो इनकी बात सभी सुनते हैं, इसीलिए तो जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अमीन से फरमाता है कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। और फिर जिब्राइल उनसे मोहब्बत करने लगते हैं ऐसे बंदे से, और आके फिर फरिश्तों से फरमाते हैं कि है फरिश्तों, अल्लाह और जिब्राइल फलां से मोहब्बत करता, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो ये नहीं कहते अच्छा क्यों करता है, अच्छा क्यों मोहब्बत करें हम, अच्छा पहले वजह बताओ ऐसा उस आदमी ने क्या कर दिया, बस वो भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। आप सोच लें कि फिर ये फरिश्ता कितना अजीम फरिश्ता है, उसने कोई कमी ज्यादती इस वही में नहीं की, इसकी बात आसमानों तक में मानी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे ले जाने वाले भी यही फरिश्ते थे, तो उनकी कितनी बड़ी इज्जत है उनकी, और उनके जरिए इस कुरान को हम तक पहुंचाया गया। अब फिर भी हम इस कुरान की अजमत को ना पहचाने, फिर भी हम इस कुरान को वो ड्यू हक ना दे, और इसकी कदर ना जाने, तो कितनी बदनसीबी है हमारी। वमा साहिबुकुम भी मजनून। अब सेकंड जो इस चेन में, जो जिस चेन के जरिए ये कुरान हम तक पहुंचा है, उस चेन में जो सेकंड जो टेकर थे इस वही के, वो पहले जिब्राइल अमीन ने लिया, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अब उनके साथ जो उनको जहन के अंदर बातें थी, उनको एड्रेस किया गया कि तुम कहते हो कि ये मजनून है, दीवाने हैं। तो वमा साहिबुकुम भी मजनून, तुम्हारा साथी कोई मजनून नहीं। ये क्यों कहा गया? ये नहीं कहा गया हमारा पैगंबर मजनून है, तुम्हारा साथी क्यों? वो तो तुम्हारे साथ ही रहते थे, अगर मजनून होते तो तुम आज तक ना देखते। उन्होंने आज तक कभी कोई जुनूनी बातें की? 40 साल से तुम्हारे दरमियान रह रहे हैं, कभी तुमने उनसे कोई ऐसी बात सुनी? वलकद रआहु बिल उफुकिल मुबीन। अब वो जो चीज मैंने आपको कहा कि चेन जब होती है ना, तो एक नरेटर से दूसरे तक, एक से दूसरे तक चेन मिलती भी है या नहीं, ये हदीस में बहुत देखा जाता है, वरना उस हदीस को कह दिया जाता है कि नहीं ये हदीस ज़ईफ है, क्योंकि इसका लिंक नहीं मिल रहा हमें। लिंक मिलना जरूरी है। क्या जिब्राइल अमीन की कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा भी था कि ये जिब्राइल ही है जो मेरे पास वही लेकर आते हैं, या ऐसे ही सोच लिया, या इस वक्त कोई और लाता हो और उन्होंने समझा होगा कोई फरिश्ता है? नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया उनको उन्होंने देखा था बिल उफुकिल मुबीन। 2 दफा आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहि सलाम को उनकी मलकी शक्ल में देखा, यानी फरिश्ते वाली शक्ल में देखा। एक दफा कब? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हो चुकी थी और आप हिरा से नीचे तशरीफ ला रहे थे, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज सुनी थी, ए मोहम्मद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखा, कोई नहीं नजर आया, फिर आगे बढ़े तो फिर आवाज आई, ए मोहम्मद। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर तीसरी दफा आवाज आई, तो आपने अपना सर जब उठाया तो सारा आसमान भरा हुआ था परों से, उस फरिश्ते के जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे पास हीरा में आया था। इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए कि ये वो ही फरिश्ता है जो हिरा में आया था। फिर दूसरी मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए हैं, तो पहले फरिश्ता जिब्राइल अलैहि सलाम अपनी मलकी सूरत में नहीं थे, इंसानी सूरत में होंगे या जिस भी सूरत में थे, लेकिन जब 7वें आसमान पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, तो वहां पे दोबारा जिब्राइल अलैहि सलाम अपनी असल सूरत के अंदर आ गए। तो 2 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन आंखों से देखा था। इसलिए ये जानना जरूरी है कि ऐसे ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही कह दिया, या आपको नऊज़ु बिल्लाह कोई धोखा लग गया, या कोई नजर का धोखा हो गया, या कोई आपको बात समझ नहीं आई, या कुछ है, आपने उनको पूरे रोशन उफक पे देखा, कोई अंधेरा नहीं था, कोई कोई कमरे का कोना नहीं था, कोई गार नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी कि पता ही ना चलता। उफक पे थे वो, और उनके 600 पार थे, और वो उफक भरा हुआ था, इतने बड़े फरिश्ते हैं वो। और फिर सूरह मुदस्सिर की आयात नाजिल हुई थी, तो वो मजनून नहीं है, उन्होंने वाकई जिब्राइल अलैहि सलाम को देखा है। वमा हुआ अलल गैबी भी दोनीन, और ना ही वो गैब पर बखील है। दोनीन का लफ्ज जो है ना, ये समझने की जरूरत है, ये बुखल वैसे नहीं जैसे आप कोई माल में बुखल करता है, बुखल इंफॉर्मेशन शेयर करने में। इसको बहुत अच्छी तरह आज के जमाने में तो आप देख सकते हैं, देखें आज के वक्त में भी ऐसे लोग जरूर मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, कि जब उनको कोई खैर की बात पता चलती है ना, तो वो कहते किसी और को ना पता चले, बस ये मुझे ही पता चले। चाहे वो कोई रेसिपी है, चाहे वो अपने बच्चों को कोई ट्यूटरिंग कराते हैं, चाहे वो कोई और खैर का काम है, चाहे वो कहीं कोई मिसाल के तौर पे कोई कोई सेल लगी हुई है, कोई उनको कोई अच्छी चीज मिल गई है, कोई कोई अच्छे बंदे का पता चल गया, कोई काम कर देता है अच्छा, कोई केटरिंग करते हैं, कोई कुछ, वो इस चीज को इतना छुपाते हैं। चाहे कोई मेड है उनके पास, कहते इसका भी पता ना किसी को चल जाए, दूसरा भी रख लेगा। तो ये है दोनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं थे, ये हमारे ही दिल छोटे और कितने तंग हैं, कि हम कोई खैर की बात ना दूसरे तक पहुंचाने में इतना मुकल करते हैं कि बस खैर मेरे तक रहे, किसी और तक ना रहे। तो तुम्हारे तो साथी वो भी नहीं है कि गैब पे बुखल करें, यानी जो अल्लाह ताला ने उनको गैब की खबरें बताई हैं, जो वही के जरिए उनको पता चला, उन्होंने कुछ नहीं उनमें से छुपाया, सब का सब तुम्हारे सामने रख दिया। वो तो वो भी करते नहीं है ऐसे, जबकि जो काहिन किस्म के लोग होते हैं, जो जैसे वो कहते थे ये काहिन है, ये ऐसे काहिन किस्म के लोग, तो ऐसी उनके पास बात पहुंच जाए तो वो तो किसी को देते ही नहीं है, जब तक उसे फीस ना ले ले, माल ना बटोर ले, अपने काम ना करवा लें। तो ये तो फ्री बांट रहे हैं लोगों में, फ्री खैर दे रहे हैं। वमा हुआ भी कौली शैतान रजीम, और जैसे पहले भी हमने कहा ना, वमा हुआ भी कौली क्या है, पीछे हम पढ़ चुके हैं सूरह हदीद में, नहीं 28 29वें पारे में। तो वमा हुआ भी कौली शैतान रजीम, ये शैतान मरदूद का भी कॉल नहीं है कि कोई कहे कि पता नहीं जिन्नात इनके पास आते हैं, जैसे अबू लहब की बीवी ने कहा था जब कुछ दिन वही नहीं आई तो अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, उसने कहा कि ए मोहम्मद क्या तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया। तो ये शैतान का कॉल नहीं है, शैतान क्या नेकी की बातें बताएगा, शैतान क्या तौहीद की बात बताएगा, शैतान क्या लोगों के साथ भलाई करने का किसी को कहेगा। तो ये वो भी नहीं है कि सारी तारीफ इस वही की है कि देखो ये वही कितनी अजीम शय है, इसका लाने वाला कैसा अजीम फरिश्ता था, और इसको आगे पहुंचाने वाले, इसको अपने दिल पे लेके आगे तुम तक पहुंचाने वाले कितनी अजीम शख्सियत है। उस हस्ती को देखो कि वो तो तुम्हारी खैर चाहते हैं, वो तो बुखल भी नहीं करते कि मैं अपने तक ही समेट के रख लूं, वो तो चाहते हैं तुम तक पहुंच जाए ये खैर। और ये तो उन तक वो किसी जिन ने किसी शैतान ने नहीं पहुंचाई हक की बात, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। फअइना तज़हबून, अब ये हैं तो दो लफ्ज़ मगर पूरी कहानी इनके अंदर है। कहाँ जाते हो फिर, इस कुरान को छोड़ते हो, इससे दूर भागते हो, इससे गफलत करते हो। अफा मिन हादल हदीस अंतुम ता अफा मिन हादल हदीस ताजबून व तदहकून वला तबकून व अंतुम सामिदून। ये हम सूरह नजम में पढ़ चुके हैं ना, इस पे तुम ताज्जुब करते हो, तुम हंसते हो रोते नहीं हो, तुम और चीजों में वक्त गुजारते हो, उसके साथ वक्त नहीं लगाते। तो मुदहिनून भी कहा गया सूरह वाकया में, क्या तुम इसी से सुस्ती बरतते हो, इसी को छोड़ते हो, इसी से बेइत्नाई बरतते हो, गाफिल हो इससे कि वो जो अल्लाह की रस्सी बताई गई कि ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसकी पैरवी करेगा वो हिदायत पे रहेगा, जिसको छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा, तुम इसी को से दामन बचाते हो। हाय कोई कह ना दे, हाय कोई बुला ना ले, हाय मुंह छुपा के चले जाओ, अल्लाह ताला फरमा रहा है फइना तज़हबून, कहाँ जाते हो, ये अल्लाह ताला का गिला है इंसान से, किधर जा रहे हो तुम, तुम्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए खैर का पैगाम दे दिया जिसमें हमारी जन्नत है, ये हमारी जन्नत का रास्ता, ये हमारी जन्नत तक पहुंचाने वाला है हमें, उसी को छोड़ छोड़ के भागते हो। हाय पढ़ना ना पड़ जाए, हाय 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 अब ये इतने घंटे इसके साथ लगाने पड़ गए, हाय हमारे तो फलां काम रह जाएंगे, काम ही इतने ज्यादा है, हम तो इतने बिजी हैं। तो सोचो तो सही, वो जो तुम्हारे लिए खैर का पैगाम है उसी से भागते। ऐसा ही है जैसे आप सोचे ना, मिसाल तो नहीं हो सकती लेकिन माँ कहती है ना, अरे कहाँ जा रहे हो, मैं तो तुम्हारी हमदर्द हूं, मैं तो तुम्हारी गमख्वार हूं, मैं तो तुमसे सबसे ज्यादा तुम्हारी खैर ख्वाही करने वाली हूं, तुम मुझे ही छोड़ छोड़ के भाग रहा है, मेरे से ही दूर होता है, किसी और को तूने अपना हमदर्द समझ लिया। वही ना तसाबू, कहाँ जाओगे, अल्लाह की बात को छोड़ के कौन सा आसमान तुम्हें पनाह देगा, कौन सी जमीन तुम्हें अपने अंदर बसाएगी, किधर जा रहे हो, और आज देखें लोग इससे दामन छुड़ाते हैं। हमें ना पढ़ना पड़े, ना सीखना पड़े, ना समझना पड़े, अमल तो है दूर की बात है, अमल तक तो बात ही नहीं जानी, लेकिन हमसे पढ़ा भी नहीं जाता भाई। जबकि इसमें अल्लाह ताला ने इसी में सकून रखा है, तत्मईन्नल कुलूब इसी को कहा है, अल्लाह का जिक्र में ही है, इसमें ही ठंडक है, इसमें ही सकून है। इंसान कहीं मौसीकी में सकून ढूंढता है, कहीं इंसान गुनाहों में लज्जत पाने के लिए उधर भागता है, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बढ़ता है और सोचता है यहां पे मजा है, वहां पे बेकरारियां है सिर्फ, वहां पे बेसकूनियां है सिर्फ, वो अंधेरे हैं, ये नूर है, वो वहशत है, ये रहमत है। इसको अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ये अर-रहमा है, इसको खुद फरमाया ये हिदायत है, इसको फरमाया ये अन-नूर है। नूर को छोड़ के अंधेरों में भटकना पसंद करते, पाइना तजाबून, जो इसको छोड़ेगा वो अंधेरों में भटकेगा, उसके लिए और कुछ नहीं सिवाय अंधेरों के। नूर तो यहां है, तुम नूर छोड़ के अंधेरों को प्रेफर करते हो। कितने सारे गिले किए ना अल्लाह ताला ने, बल अक्सर हम ला यालमून अन्ना तू फकून कलील अम्मा तदक्करून बल हम कौम यादलून ही ना था। सवाल है आपसे, ही ना था वो, कहाँ जा रहे हो उस कुरान को छोड़ के, कहाँ जा रहे हो अल्लाह की याद से दामन बचा के छुड़ा के, क्योंकि ये अल्लाह की याद है, इसमें ये अल्लाह का जिक्र है, ये रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर से ही जान छुड़ाओगे तो दुनिया में गुम हो जाओगे। कौन तुम्हें याद दिलाएगा, कौन तुम्हें लौटने की याद दिलाएगा, कौन तुम्हें झंझोड़ेगा, कौन तुम्हें जगाएगा, सो जाओगे, आ जाओ इसकी तरफ, फफिरू इलल्लाह, फरार हो के आ जाओ अल्लाह की तरफ। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने फरमाया आ जाओ अल्लाह की तरफ, भाग के आ जाओ, किधर जा रहे हो। एक बच्चा होना माँ बाप से ही दूर भागना शुरू हो जाता है, उनसे ही बदजन हो जाता है, ये मुझे ये कहते हैं, ये मुझे ये करने का कहते हैं, सुबह सुबह जगा देते हैं, स्कूल भेजते हैं। एक बच्चा ऐसे कहने लगे तो माँ बाप कहेंगे नहीं, किधर जा रहे हो, दुनिया में जाओगे ख्वार हो जाओगे, वो तुम्हारे माँ बाप के पास ही तुम्हारी पनाह है। अल्लाह ताला के साथ कोई तशबीह नहीं दी जा सकती, कोई मिसाल नहीं बयान की जा सकती, लेकिन ये इंसान को खा जा रहा है, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब इस उम्मत के हालात को मैं देखती हूं, भूल गए हैं उस सबक ही, भूल गए हैं जो हमारे नबी ने दिया था। आज हमारी महफिलें देख ले, कभी अगर जाने का इत्तेफाक हो जाए तो दिल कट जाता है, दिल बेचैन हो जाता है, मर्द औरतें मिक्स बैठे हुए हैं, औरतों के लिबास देखे तो इंसान हैरान हो जाता है, ये मुसलमान है, म्यूजिक कानों को फाड़ रहा होता है और सब लोग कह कह लगा रहे हैं, कोई एहसास नहीं, गफलत ऐसी, कोई भी जरा सा भी इस चीज के ऊपर दुख नहीं कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम किधर को चल पड़े हैं। जो कौम, जो उम्मत मौसीकी की शैदाई हो जाए ना, उसका जवाल शुरू हो जाता है। बड़े बड़े बादशाहों की हिस्ट्री पढ़ के देख ले, जो वो कहते ताऊस और रबाब में, यानी राग और रंग के आदि हो गए, बस उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। जिस उम्मत में सारे तानसेन ही पैदा हो रहे हो, उनका जवाल ही आना है। कुरान को छोड़ दिया, गानों की लज्जत में लग गए, सामेदून इसको भी कहा गया कि गाने बजाने में लग गए और कुरान को छोड़ के बैठ गए। यही ना तदाबून, तुम किधर को चल पड़े हो, किधर को ये उम्मत इस वक्त जा रही है, कभी आप सोचते। ऐसा दिल रोता है मेरा कि क्या हो गया इनको, इन लोगों को ऐसा लगता है ऐसे सो गए हैं कि इनको कोई एहसास ही खत्म हो गया, सोए भी नहीं है मर चुके हैं। ये नहीं कि उनको कोई जगाने वाला नहीं, कुरान नहीं भी पढ़ते तो दुनिया के हालात जगाने के लिए काफी हैं। कई लोग भूख से मर रहे हैं, कहीं जुल्म इतना हो रहा है, कहीं कत्ले आम है, कहीं बच्चों की पुकारे हैं, इनको किसी चीज का भी एहसास नहीं, कोई चीज इनको जगाती ही नहीं। कुछ देर के लिए सोच ही लें, इनकी मजलिस में और काफरों की मजलिस में कोई फर्क ही नहीं। क्या हमारी मजलिसें हो गई हैं, किधर निकल आए हम? हमारा तो वो काम था कि हमने लोगों को रास्ता दिखाना था, हम खुद ही रास्ता भूल गए। जब कश्ती का मल्लाह ही कश्ती को डुबोने पे खड़ा हो जाए तो मुसाफिरों को कौन बचाएगा? जब कभी ऐसी मजलिसे में आती हूँ कई दिन मुझे रात तक भी नींद नहीं आती, यही सोच सोच के कि अल्लाह क्या हो गया इनको, क्यों ये मदहोश है, किधर जा रहे? मजलिसे वीरान है और क्लब आबाद है, सिनेमा के आगे देखो कितना रश, और मस्जिदों को देख लो, आप किसी अल्लाह के जिक्र की मजलिस में बुला ले वहां पे कितना रश है, और आप मेहंदियों और गाने बजाने में बुला ले तो तब देखो क्या हाल। कैसी बदनसीबी है, हम रास्ता ही भूल गए, जो रास्ता अल्लाह तला की तरफ जाता था। वो पुकार रहा है फईनतज़हबून, हम चले चले जा रहे हैं, कब से अपना रास्ता छोड़ दिया, उतर चुके सीधे रास्ते से, और हमें कोई एहसास ही नहीं है, खत्म हो गया एहसास भी। अल्लाह ताला फिर भी बुला रहा है। अब देखे ना, जैसे एक बच्चा होता है ना, वो घर से निकल जाए तो बच्चा परवाह नहीं करता, लेकिन माँ बाप को पता है, वो रात को भी दरवाजा खोल के रखते हैं कि शायद आ जाएगा, अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं हमारे, फिर भी वो कहता है किधर चले गए हो, किधर गुम हो, किधर जा रहे हो, कोई अपनी समत तो देखो, कोई डायरेक्शन तो देखो, किस डायरेक्शन में तुम चल पड़े इन काफरों की, जिनको कुछ ना मिला, कुछ ना मिला इस लाइफस्टाइल से, हम वो लाइफस्टाइल पसंद करते, उसको सीने से लगाए में, वो करना चाहते हैं जो हमारी मर्जी है, जो जी में आए, जो वेस्ट कर रहा है, जो कोई काफिर कर रहा है, वो जिंदगी हमें प्यारी, और जो कानून अल्लाह ताला दे दे वो हमें नापसंद। रोजाना हम पढ़ते हैं, रोजाना ए दिन सिरात मुस्तकीम, उसके बाद ये कहने की क्या जरूरत थी, सिरात लदीना अमता थी, ये कहने की कौन सा रास्ता, वो रास्ता जो इनाम याफ्ता लोगों का, अल्लाह उनके रास्ते में ना चलाना जो गुमराह है, जिन पे तेरा गजब हुआ, ये कहने की क्या जरूरत थी, अल्लाह ताला को तो पता ही है सिराते मुस्तकीम क्या है। हमने याद करना है हर रोज ये सबक कि किन के रास्ते पे चलना है और किन के रास्ते पे नहीं जाना, फिर भी वो राहें प्यारी लगती हैं जो गैरों की हैं, वो जो रब का रास्ता है वो पसंद नहीं आता, वो बोर लगता है, उसमें घुटन महसूस होती है, वो कैद लगता है, वो रिस्ट्रिक्शन लगती है, उसमें मजा नहीं है, हम मजे ढूंढने कहीं और चले हैं ना, वो मजे नहीं है, वो अंधेरे हैं, वो वीरानियां हैं, उसे कुछ नहीं मिलेगा। वो ही लोग जब एक मकाम पे पहुंच जाते हैं खुदकुशियां कर लेते, अगर उनको इतने ही मजे होते तो खुदकुशी कभी ना करते, वही लोग हैं जो डिप्रेशन की दवाइयां खाते, वही लोग हैं जिनको रातों को नींदें नहीं आती, उनके रास्ते पे चल के हम उन जैसे होना चाहते हैं। तदहबू, दो लफ्ज हैं, इनका जवाब आप दे दें, किधर जा रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ या उससे दूर? अगर उससे दूर जा रहे हैं ना, तो वो तो बुला रहा है, फिर रू इल्लाह। अगर आज नहीं आओगे तो एक दिन तो जब मौत का फरिश्ता आएगा तो जाना ही पड़ेगा। कितनी देर भागोगे? इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन। नहीं है ये मगर एक नसीहत है। किसके लिए? मुसलमान के लिए सिर्फ नहीं है, मुत्तकी परहेजगार के लिए नहीं है, लिल आलमीन, सब जहानों के लिए, सब जहान वालों के लिए ये एक नसीहत है। लिमन शाह मिनकुम अन यस्तकीम, जो तुम में से चाहता है ना सीधे रास्ते पे आना, तो उसके लिए ये एक नसीहत है, उसके लिए ये एक रिमाइंडर है। तो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, फैसला तो आपको करना है। आप जब फैसला करेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा तशाउना इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। आपके फैसला करने से अकेले कुछ नहीं होगा, फिर अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगो, क्योंकि जब तक वो ना चाहे तुम नहीं आ सकते। पहले तुम चाहो, फिर अल्लाह चाहेगा तो तुम आ सकते। हिदायत का रास्ता फिर मांगो, पहले तो तड़प होगी कि मैंने इस रास्ते पे आना है, तो फिर है ना, जब फैसला ही नहीं ये किया, जब चाहते ही नहीं हो, तो अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को नहीं लेकर आता। जबरदस्ती उसने करना होता तो तुम आसमान खोल के दिखा देता, जन्नत जहन्नम फरिश्ते सब दिखा देता, सब सीधे हो जाते। लेकिन उसने जबरदस्ती लाना नहीं है, ये मकसद ही नहीं है। वो यही चाहता है कि तुम खुद आओ, तुम खुद फैसला करो। मैंने अल्लाह ताला अब बस तेरी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारनी, आई डोंट केयर कोई क्या कहता है, आई डोंट केयर कोई मेरे से राजी होता है या नाराज होता है, मुझे नहीं परवाह। ये फैसले हमें करने हैं, और अगर फैसला आप करते हैं कि मैंने सीधा चलना है, तो ये है वो रास्ता कुरान। इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन लिमन शाह। यहाँ पे रुकना नहीं है, किसके लिए? कर लिल आलमीन के लिए, जहान वालों के लिए, कि जहान वालों में से जो भी चाहता है सीधे रास्ते पे चलना, उसके लिए है ये, यानी उसके लिए यही है। इसके अलावा कोई और जगह से आप गाइडेंस लेना चाहो, नहीं मिलेगी। आप कितने भी उलूम हासिल कर लो, आप कितने भी कहो मैं ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, यहां से मुझे रहनुमाई मिल जाए, वो नहीं मिलेगी। कुरान के बगैर जिंदगी नहीं है। अगर आपकी जिंदगी कुरान के बगैर गुजर रही है ना, ऐसा मतलब आप नहीं चाहते सीधे रास्ते पे आना, क्योंकि ये से रास्ते मुस्तकीम है। शुरू भी हमने कुरान किया तो हमने यही कहा कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दे, और उसके बाद ही स्टार्ट हो गया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तुमने हिदायत मांगी थी ना, तो ये लो ये हिदायत है, ये है किताब, इसमें कोई शक नहीं, ये है हिदायत, वहां से शुरू हुआ। और अब आखिर में आके भी यही बात है कि जो तुम में से सीधा चलना चाहता है, सीधे रास्ते पे आना चाहता है, उसके लिए यही एक कलाम है अल्लाह का, जो उसको सीधे रास्ते पे रख सकता है, और कोई चीज नहीं रख सकती। जैसे ये समझाता है वैसे कोई नहीं समझा सकता, जैसे ये दिल के अंदर खशियत पैदा करता है, दिल को हिलाता है, कोई नहीं हिला सकता। तो तुम अगर चाहते हो राहे रास्त पे आना, तुमने अगर डिसाइड कर लिया, तो फिर कुरान को थाम लो, कुरान को नहीं छोड़ना है। तो अब आप जो लोग पढ़ चुके, अब वो कहे अब क्या पढ़ने की जरूरत है, अब पढ़ने का क्या फायदा, मैंने तो पढ़ लिया। तो क्या आपको रिमाइंडर चाहिए होते हैं या नहीं? आप जब हम सब मानते हैं कि ये दुनिया इतनी ज्यादा टेम्पटेशंस वाली है कि मुझे भूल जाता है, और मैं तो वो वैसे ही मेरा हाफजा बहुत कमजोर है, तो फिर क्या आपको रिमाइंडर नहीं चाहिए? अगर हम समझते हैं कि हमें वाकई कभी हम इससे आजाद नहीं हो सकते, अल्लाह ताला की नसीहत से, उसकी याद दहानी से, तो अपने आप को जोड़े रखें जिंदगी भर कुरान से, कभी इसको छोड़े नहीं, और कभी ये ना समझें कि काफी है, कुरान एक है लेकिन इसकी तफसीर, इसकी एक्सप्लेनेशन, ये कभी इंसान इसके अंदर गोते लगाता रहे कभी खत्म नहीं हो सकती, मोती चुनता रहे इसके। तो वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम्हारे चाहने से नहीं कुछ होगा जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तो यानी अल्लाह ताला फिर तुम्हें तौफीक देगा, अगर तुम्हारे अंदर चाहत है ना फिर वो तुम्हें तौफीक देगा, और वो चाहे तो दिल में ऐसी इस चीज की तौफीक डाल दे और ऐसे इस रास्ते के ऊपर चला दे कि जन्नत तक पहुंचा दे। तो हदीसे कुदसी है ना चाहत से, कि अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, तेरा चाह तेरे रब के बगैर तो पूरा नहीं हो सकता, हाँ तेरे रब का चाह तेरे बगैर पूरा हो जाता है। अरे मेरे बंदे अगर तू वो कर जो मैं चाहता हूं तो मैं वो सब कर दूंगा जो तू चाहता है, और अगर तूने वो किया जो मैं चाहता हूं तो मैं तेरी चाहतों को पूरा कर दूंगा, लेकिन अगर तूने वो किया जो तू चाहता है तो मैं तेरी चाहतों में तुझे थका दूंगा, तुझे परेशान कर दूंगा, तेरे कामों को बखेर दूंगा, और होगा वही जो मैं चाहता हूं। तो हमारे चाहने से इतना ही है कि हम एक इरादा कर लेते, एक नियत कर लेते और फिर अल्लाह ताला से उसकी तौफीक मांगते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता हमने तो चाहा लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा। मैं तो बहुत चाहती हूँ बस आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरे लिए करते मुझे तौफीक दे दे, इसका मतलब आपकी चाहत उतनी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी के अंदर चाहत देखता है, उसका शौक देखता है, तो उसको जरूर अता फरमाता है। ये जो हिदायत का पैगाम है ये किसी को जबरदस्ती भी नहीं दिया जाता, कोई ना चाहता हो तो उसके ठूसा नहीं जाता, और कोई मांगे तो उसको महरूम नहीं रखा जाता। तो अपने लिए हम हिदायत मांगे, अल्लाह ताला से मदद मांगे, इसका शौक रखें और जेन्युइन शौक रखें, ऊपर ऊपर से मत कहते जाएं मुझे तो बहुत शौक है, जैसे अल्लाह ताला के नऊज़ु बिल्ला के कसूर है कि उसी ने नहीं मुझे तौफीक दी, वरना चाहत में तो मैं किसी से कम नहीं थी, मुझे बहुत चाहत थी। ये ना कहें, ये कहें मेरी चाहत में ही कमी है। अल्लाह ताला इस सूरत से हमें बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। हम अगली सूरत पढ़ने से पहले इसकी तिलावत इंशाल्लाह सुनते फिर आगे चलते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.